समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहने के उपाय। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जेनामणि और लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
और श्रोताओं, अब आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 2331444 और दूसरे नंबर 2342100 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है।
नमस्कार
जनामणि जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है आज की हीट वेव वास्तव में है क्या और ये किस तरह से लोगों पर असर डालता है और ये कब होता है?
जो हीट वेव है वो एक्चुअली जो हमारा एक डेफिनेशन होता है, जो हम जैसे समर सीजन में तापमान बढ़ता रहता है तो एक एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी जो सामान्य से ज़्यादा होना उसी को हीट वेव बोलते हैं। लेकिन वो सामान्य, जैसे दिल्ली का अभी आजकल सामान्य जो है 34 डिग्री 35 डिग्री है, अगर 5 डिग्री एबव रहता है, 4.5 डिग्री हम लेते हैं एबव नॉर्मल, और 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 40 से ज़्यादा, अगर 40 से ज़्यादा है जो मैदानी इलाका के लिए, और जो नॉर्मल जो एवरेज होता है, एवरेज से अगर 4.5 या 4.5 से एक ज़्यादा होता है तब हीट वेव कहा जाता है। लेकिन हिल एरिया, कोस्टल एरिया, वहाँ तापमान कम होता है, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर है, उसके लिए डेफिनेशन जो है वहाँ तक कभी 40 डिग्री रिकॉर्ड नहीं होता है, वहाँ का तापमान थोड़ा कम में हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन एवरेज के ऊपर अगर रहता है 4.5 तो हम हीट वेव मानते हैं, चाहे कोस्टल है या चाहे प्लेन्स है या हिल्स है।
इस बीच दिल्ली से हमारे पहले श्रोता धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए।
धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं धर्मवीर गंजरेगा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
नमस्कार
डॉक्टर साहब, जैसे आजकल हमारे देश में शुगर के पेशेंट काफी हद तक है, काफी ज्यादा है बीपी के भी, ऐसे व्यक्ति को अगर क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जो उसको लू लग जाए, लू के क्या लक्षण होते हैं और क्या लू बाहर निकलने से ही लगती है कि लू घर के अंदर रहने के बावजूद भी लग जाती है, इसके ऐसा होता है क्या?
जी, डॉक्टर अनुपम प्रकाश आपके सवाल का जवाब देंगे।
नमस्ते, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसा है कि गर्मी की लहर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अभी इस समय गर्म काफ़ी है और अगर ज़्यादा रहेगा तो हम सभी को ध्यान रखना वैसे भी बहुत ज़रूरी है और इस समय हम बहुत ध्यान रखें। शुगर के मरीज़, जैसे आपने बताया, अगर शुगर के मरीज़ का शुगर कंट्रोल चल रहा है और बाकी बीमारियाँ नहीं हैं तो इतना खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर शुगर ज़्यादा है तो वैसे ही शुगर ज़्यादा की वजह से पेशाब में शुगर और पानी की मात्रा ज़्यादा चली जाती है तो ऐसे लोगों को गर्मी से, जो डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसा कि आपने दूसरा पूछा कि घर के अंदर रहते हुए भी अगर है हमें शीत, ये गर्मी की लहर जो है उसका प्रभाव हो सकता है, तो हाँ ऐसा बिल्कुल संभव है। अगर आपकी गर्मी, अगर आप छांव में भी हैं लेकिन टेम्परेचर जो तापमान ज़्यादा है तो उस समय भी आपको ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा आपको जो है गर्मी की लहर का दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। ये ज़रूरी है ध्यान रखना कि छांव में रहने से हमारा बचाव होता है लेकिन ये नहीं है कि छांव में रहने से हम बिल्कुल जो है असर से बच जाएंगे, ऐसा संभव ज़रूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हवा चलती रहे तो जो है आप फिर बचे रहते हैं, तो गर्मी से बचना ज़रूरी है। जैसा कि आपने तीसरा सवाल पूछा कि लू लगने के क्या जो है महसूस, कैसे पता चलेगा कि लू लग रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि चक्कर आ रहा है, सर में दर्द है, आप जो है किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपको जो है प्यास ज़्यादा लग रही है या आपका दिमाग का संतुलन हिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जी मिटला रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपको गर्मी की लहर का असर हो रहा है, तो इसमें ज़रूर डॉक्टर साहब को दिखाएं क्योंकि ये और भी चीज़ों के लक्षण हो सकते हैं। कई बार शुरुआती तौर पे जो है पैरों में आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, या आप शाम को आते हैं या दोपहर में भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जैसे हम लोग हीट एग्जॉशन कहते हैं, ये सब जो है गर्मी की लहर के अलग अलग दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
और दरभंगा से हमारे साथ अगले श्रोता है मोहन पासवान जी। मोहन जी आपका सवाल पूछिए।
सर इकट्ठे प्रणाम।
प्रणाम
सर। गर्म तरंग से बचने के सर्वोत्तम उपाय खान पान एवं सावधानियां क्या क्या है सर?
डॉक्टर
गर्म लहर से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि पानी नियमित मात्रा में पीते रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि डिहाइड्रेशन जो है गर्मी में पानी ज्यादा हम लोग लूज कर जाते हैं अपनी त्वचा से और सांस से, तो ये जरूरी है कि आप पानी की मात्रा ज्यादा लें। इसके साथ ही तरल पदार्थ भी लेना जरूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, दिल की बीमारी नहीं है, तो आप तरल पदार्थ जरूर लें। नमक, चीनी और ये जो है नींबू है, ये डाल करके शिकंजी बना करके आप ले सकते हैं अगर आपको बाकी बीमारियां नहीं है। नहीं तो सिर्फ पानी ले और थोड़ा सा नमक डाल करके ले अगर ब्लड प्रेशर नहीं है। तीसरी चीज, जैसा कि अभी बात हुई थी, आप छांव में रहें, कोशिश करें अगर आपको जाना है किसी काम से तो सवेरे जाएं या शाम को जाएं, दोपहर में भरी दोपहरी में बाहर का नहीं जाएं,
मना है।
और अगले श्रोता हमारे हैं राजेंद्र हैं हिसार हरियाणा से। राजेंद्र जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्कार जी लक्ष्मी मिचल जी और डॉक्टर साहब, जो लेडी हार्ट के डॉक्टर आया साहब आए उनको भी नमस्कार जी।
नमस्कार।
एक साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे को जी दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए जाना था, और पानी कम पीने से क्या नुकसान हो सकता है, ज्यादा पीने से क्या मतलब इसके फायदे हैं या मतलब नुकसान है? बच्चे जैसे हम या दिन भर में कहीं भी सफर में जाते हैं तो जूस पैक में होता है तो वो पिलाना अच्छा है या नहीं पिलाना चाहिए, इसके बारे में जानना था।
देखिए गर्मी की लहर से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों का बचाव हो, लेकिन हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम उम्र के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों में जो है गर्मी की लहर से जो तापमान का संतुलन होता है कई बार ठीक नहीं रहता है, तो ये लोग जो है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, हीट एग्जॉशन है, इसको गर्मी के दुष्प्रभाव के ज़्यादा ये लोग चांसेस होते हैं कि इनको हो सकते हैं। तो बच्चों को जैसे आपने कहा, देखिए इन लोगों में जो बिल्कुल ही नवजात शिशु होते हैं उनके अलावा उनको तो वैसे ही माँ का दूध दिलाना ज़रूरी है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनको पानी का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नियम रखना है कि इतना ही पानी दिलाना है। आमतौर पर जो नॉर्मल आदमी होता है उसको कितना भी आप पानी दिलाएंगे वो अगर पानी की कमी नहीं है तो वो बर्दाश्त कर लेता है, और अगर ज़्यादा होता है तो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। जब तक कि जैसा मैंने कहा ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की बीमारी नहीं है या कोई और बीमारी नहीं है, गुर्दे की बीमारी नहीं है, तो इन सब स्थिति में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कितना पानी लें, और उसमें आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। मैं यहाँ पर राय नहीं देना चाहूँगा इस बारे में, लेकिन अगर आपको ये सब बीमारियाँ नहीं हैं तो आप पानी लीजिए। गर्मियों में जो वयस्क लोग हैं उन्हें कम से कम 4 से 6 लीटर पानी 24 घंटे में पीना ही चाहिए, और अगर बच्चे जैसे हैं 8 से 12 साल के बच्चे हैं तो मैं उनसे कहूँगा 2-2.5 लीटर तक पानी आराम से ले सकते हैं।
जनामणि जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हीटवेव या इस तरह के मौसम के जो भी अलर्ट्स होते हैं आम लोगों तक पहुँचाने में ऑल इंडिया रेडियो या न्यूज़ के जरिए हम पहुँचाते रहते हैं, लेकिन सरकार के क्या कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आम व्यक्ति भी मौसम के बारे में या फिर हीटवेव या फिर रेन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त करे, कोई ऐप हो या वेबसाइट हो, उस तरह की चीज़ें?
नहीं देखिए, जो बिल्कुल जो mausam.gov.in है हमारा वेबसाइट है, जो गूगल में जाके भी IMD अगर टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा, वेबसाइट में सारा डाटा मिलता है सर्च मार के। और दूसरा जैसे आप बताए कुछ हमारा ऐप है, स्पेसिफिक ऐप है, जैसे हमारा मेन जो दामिनी ऐप है, जैसे बिजली गिरता है तो दामिनी ऐप में जाएंगे, तो मौसम ऐप भी हमारा है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, जो मौसम ऐप में आप कहीं भी लोकेशन, कोई पंचायत या कोई विलेज का भी, आप कितना तापमान होगा और 7 दिन तक आपको मिलेगा, हीटवेव का कंडीशन क्या होगा, मतलब उस नलहर का जो स्टेटस है वो भी आप मिल सकता है। लेकिन आज सबसे आजकल जो है मोबाइल में मैसेज जाता है आपके पास, अगर जैसे कोई कोई गांव का आदमी है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो नॉर्मल फोन में भी मैसेज आता है, तो जरूर वो मैसेज को देखे। हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्या कहाँ कहाँ होता है, जैसे कोई भी सीवियर वेदर हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे हीट वेव हो, चाहे हैवी रेन या फ्लड हो, तो हर नेचुरल डिजास्टर का यानी कोई भी अगर आता है, जो आपदा आता है, तो हर आपदा के लिए वो मैसेज आता है। तो इसीलिए एक जागरूकता चाहिए, हर सिटीजन जो है अपना मोबाइल चेक करते रहें। ठीक है, सो अभी हीट वेव का जैसे स्पेल तो नहीं है, अभी शुरू हो रहा है 16-17 तारीख को, तो मैसेज भी जाएगा। तो येल्लो ऑरेंज रेड अलर्ट होता है, तो जैसे डॉक्टर साहब बताया कि ऑरेंज अगर रेड अलर्ट जारी है हीट वेव का, तो बाहर निकलने से पहले अपना मोबाइल को चेक करें कि कहीं ऐसा अलर्ट तो नहीं है हीट वेव का, क्योंकि जागरूकता और अपने को सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है।
मध्य प्रदेश से इंदौर से हैं अनिल कोचले जी हमारे साथ में। अनिल जी आपका प्रश्न पूछिए।
सर आपको हमारा नमस्कार। हमारा सवाल है, तीन सवाल छोटे छोटे हैं। पहला सवाल ये है कि कौन से तापमान को रेड येलो इसमें येलो में गिना जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि जिन शहरों में या देश के कई भागों में तापमान 40-45 डिग्री से ऊपर जाता है, तो उस समय जो समस्या होती है वह सबसे ज्यादा स्किन की समस्या होती है, और जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको तेज धूप से आंखों में परेशानी होती है, तो इन सबसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
बिल्कुल जैसे बताया कि अभी जैसे राजस्थान में जो है 40 से ज्यादा चल रहा है ऑलरेडी, जैसे मैंने बाड़मेर जोधपुर है या जैसलमेर है, तो वहाँ जो तापमान है बहुत ज़्यादा चल रहा है, 43-45 डिग्री है, और जहाँ तापमान 40 से ज़्यादा होता है नॉर्मली हीट वेव का अलर्ट इशू किया जाता है। और जैसे मैंने बताया येलो अलर्ट मतलब आप अपने को अपडेट रखिए, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, दूरदर्शन हो, कोई भी मतलब प्रेस से या हमारा वेबसाइट या हमारा ऐप के थ्रू में अपने एरिया का तापमान पहले जानकारी ले। अगर 40 से ज़्यादा है तो नॉर्मल येलो अलर्ट होता है, लेकिन अगर 42-43 चल रहा है तो ऑरेंज आता है। ऑरेंज मतलब आपको फुल प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा बाहर निकलने से पहले, जैसे कपड़ा ढंगना पड़ेगा, और आप अपने पानी और जैसे बताया नींबू पानी और जो भी पानी हाइड्रेटेड रखिए, और पर्टिकुलरली जो टू व्हीलर में जाते हैं उनको हीट वेव का अटैक ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप पूरा वो पेन में ड्राइव कर रहे हैं, नॉट ओनली बहुत ज़्यादा तापमान में, हमारा जो माप होता है तापमान वो डोर के अंदर, हमारा जो स्क्रीन है टीवन स्क्रीन के अंदर छाई में मापते हैं हम तापमान, वहाँ अगर 43 डिग्री रिकॉर्डेड है तो अगर आप खुले रास्ता में जा रहा है टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो जरूर 50 डिग्री को सामना कर रहे हैं, तो वो देखते हुए आप टू व्हीलर में मत जाइए। अगर जा रहे हैं तो बॉडी को पूरा कवर करके, और बार बार जैसे बताया कि आप छाई के जगह में रेस्ट करें और अपने हाइड्रेट करके फिर जाए। अब ये जो हीट वेव है इसके लिए बहुत सारा प्रिकॉशन और अलर्ट और वार्निंग के साथ चले।
डॉक्टर अनुपम आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें?
नहीं, मैं यही सलाह दूंगा कि जैसा इन्होंने कहा टू व्हीलर पे बिल्कुल सही बात है, चमड़ी जो है बिल्कुल जो है खुश्क हो जाती है, इसमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा लें जैसा मैंने कहा, और तरल पदार्थ वाले जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, चाहे नींबू पानी लें चाहे नारियल पानी लें। दूसरी चीज है चाय कॉफी और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो ना लें, क्योंकि उनसे वैसे ही डिहाइड्रेशन थोड़ा सा होता है, पेशाब ज्यादा होता है, तो इन सब चीजों का बाहर जाने से पहले नहीं सेवन करें वो बेहतर है। दूसरी चीज जैसे कहा कि हाँ स्कूटर पे या आप खुले में जाते हैं, तो अगर आप पैदल भी चल रहे होते हैं जितना तापमान ज्यादा होता है तो आंखों में सूखापन या आपको गर्मी लगती है, तो उसमें यही है कि आंखें जो है ठंडे पानी से धोएं, या फिर जो है चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा करके ड्राइव करें। ये जरूरी नहीं कि काला चश्मा लगाएं, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लासेस लगाते हैं प्लेन ग्लासेस तो भी उससे आप गर्म हवा से आपकी आंखें बचती हैं, तो ये जरूरी है कि आप जो है आंखों का चमड़ी का ये जरूर इसका ध्यान रखें, और पानी की मात्रा लेना बहुत जरूरी है।
बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी हमारे साथ है। रिंकी जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
हेलो सर, राम
राम। राम राम सवाल पूछिए।
और हाँ सर, मैं दोनों एक्सपर्ट को मैं राम राम बोलना चाहूंगी। सर नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते
जी। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे तापमान को लेकर बात हो रही है और मतलब निखिल सर ने पूछा भी इसमें बहुत सारे सवाल, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं रूरल एरिया में आती हूँ ग्रामीण, तो मैं देखती हूँ जैसे जो हमारे किसान होते हैं फार्मर होते वो चाहे वो 35+ हो या 45 हो वो उसमें काम करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानी है प्रॉपर?
नहीं देखिए, जो बिल्कुल जैसे है कि जो लाइवहुड होता है यानी इनको डेली जो है खेती में जाना पड़ता है, लेकिन पॉइंट हम लोग जैसे बार बार बोलते हैं कि जो मई महीना और जून महीने का जो धूप है, तो आप जो है जैसे सुबह करें खेती, सुबह बहुत सुबह जाके जैसे 5-6 बजे जाए और 9-10-11 बजे वो घर को अंदर आके रेस्ट करें, और उसे फिर शाम को आप कुछ और करना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, बहुत सारा जो काम है जिसमें आपको लू नहीं लगेगा या जिसमें आप हीट का जो अटैक हीट वेव का नहीं होगा वो अडॉप्ट करें। यही हमारा अभी जो आ रहा है दिन भर दिन उभर के कि जो लोग बाहर में काम करते हैं उनको हीट वेव का ज़्यादा लगने का लू लगने का शंका रहता है, तो इसलिए इसमें प्रिकॉशन सेफ्टी रहना चाहिए। और बहन आप लोग जैसे है गाँव में एक जागरूकता पता है ये सभी को कि भाई मध्य प्रदेश जो है काफ़ी हीट वेव में रिपोर्ट होता है डेथ, और इसीलिए अगर हीट वेव और डाटा ले क्या चल रहा है एक्चुअल, जैसे मध्य प्रदेश में 16-17 को शुरू हो रहा है हीट वेव, तो उसके अंदर ना जाए किसान जो है 11 बजे से 3-4 बजे तक। या
मुंबई से राहुल पटेल जी हमारे साथ है। राहुल जी आपका प्रश्न क्या है?
नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि सपोज कोई दोपहर के समय कोई धूप में बाहर निकल जाए और उसको लू की झपेट में आ जाए, तो उसको हम प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं इसके उसकी स्थिति फिर से नियंत्रण में आ जाए? धन्यवाद
डॉक्टर अनुपम।
देखिए लू से बचाव बहुत जरूरी है, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, दोपहर में जाना अवॉइड करें, अगर जाना ही पड़े तो सर ढक करके जाएं। जैसे किसानों का भी कहा, तो ये लोग गमछा रखते हैं, गीला पानी भिगो करके कपड़ा रखते हैं, जिससे बार बार आप सर पे रख लेते हैं, तो उससे आपको जो है गर्मी का जो आपके शरीर से जा रही होती है गर्मी कम जाती है। हल्के रंग के कपड़े पहने और जो है कसे कपड़े ना पहने, जैसे छांव में भी जैसे लू पड़ लगने का है तो पंखा चला करके रहते हैं लोग, और हल्के कपड़े ही खुले रखिए और मोटे कपड़े ना पहने। आजकल लोग जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं, वो दिक्कत दुखदाई है क्योंकि आपकी गर्मी निकलेगी, पसीना अंदर ही अंदर रहता है, और जो है हल्के रंग के कपड़े पहने। और अगर खुदा ना खास्ता आपको लू के सिम्टम्स जैसा मैंने बताया, चक्कर आना, सर दर्द, घबराहट, आपका कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपको उल्टी सी लग रही है और आप बेहोशी की हालत में आ रहे हैं, अगर आपका ऐसा हो ही जाता है ना खुदा ना खास्ता, तो अस्पताल जाएं। उस समय जाते समय आप ठंडे पानी की पट्टियां रख सकते हैं, अगर आमतौर पर साधारण पानी की भी पट्टियां रखेंगे तो टेम्परेचर जो है शरीर का कम आ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप चाहें कितना भी जो है ठंडक में रखें, उसे छांव में रखें, कपड़े से जो है ठंडे पानी की कट्टियां रख करके उसका जो ताप है वो कम करने की कोशिश करें और अस्पताल लेकर के जाएं। अगर होश में है तो ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं, जिससे कि टेम्परेचर शरीर का कम हो सके।
डॉक्टर जनामणि आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल जो माहौल चल रहा है ऐसा माना जाता है कि टेम्परेचर काफी नॉर्मल से बढ़ चुका है, वैश्विक स्तर पर भी बढ़ोतरी आ चुकी है, भारत में शायद वैसी स्थिति नहीं है, अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल कूलिंग किस तरह से की जा सकती है?
नहीं देखिए, जो आप बताया ऐसा नहीं है कि भारत में भी तापमान बढ़े नहीं है, भारत में भी जो 0.6 डिग्री जो पिछले 100 ईयर्स में बढ़े हैं एक्चुअली, और इवन हीट वेव का जो संख्या है उसका भी बढ़ा है और इंटेंसिटी भी बढ़ा है, पिछले बार दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसको देखते हुए जैसे वो ग्रीन छत बोलते हैं कि आप घर का जो चाहे आप कहीं भी रहे तो घर के ऊपर कुछ ग्रीन कवरेज आता है, तो बहुत सारा अवेलेबल है, आप गूगल सर्च मार के भी देख सकते हैं। जैसे गांव में कोई आपका अगर कंक्रीट छत है तो उसके ऊपर आप कुछ डाल सकते हैं, कुछ नड़ाई डाल सकते हैं, जैसे पैड़ी का जो स्ट्रॉ और कुछ पानी डाल के आप खुद कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग है अगर देखा जाए इंडिया में 8% जो पॉपुलेशन है वो ओनली अफोर्डेबल एयर कंडीशनिंग में है, एंड 92% जो है विदाउट एयर कंडीशनिंग है, तो वो 92% तो यही जो अडॉप्ट करते हैं कि कैसे टेम्पररली गर्मी से बचे, जैसे कूलर है ना, ये एक अडॉप्टेबिलिटी है मतलब। और अदरवाइज जैसे अगर बाहर आप काम कर रहे हैं तो बार बार आप गामछा अगर कवर करें अपने शरीर को, और जो बोलते हैं ना जो कोई भी सिम्टम आने ना दिया जाए, क्योंकि हीट वेव जो है किलर होता है, वेरी डिफिकल्ट टू यू नो टैकल वंस बॉडी गेट्स इनटू द हीट वेव।
और इस बीच बेंगलोर से हमारे साथ श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत जी आपका सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि IMD के प्रधान, हम लोग न्यूज में सुनते थे, आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत नमस्कार आप।
नमस्कार।
बहुत बहुत भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि जिन शहरों में कभी लू नहीं चली वहाँ भी अब लू चलने लगी। हमारे बंगलौर में पिछले सीजन में एक दिन की लू चली थी। और दूसरा ये कि आप लोग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर था कि पूरे भारत का टेम्परेचर मिलता था, उस नंबर को कृपया फिर से चालू करवा दीजिए, वो बंद कर दिया गया। और अंत में एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने अभी जो कहा 8% के पास एसी है, भाई साहब वो 8% जो गर्म हवा फेंकते हैं ना 92 को, उसको भी सहन करना पड़ता है।
नहीं बिल्कुल, आपका सारा जो पॉइंट है, जैसे बताया कि हमारा जो टोल फ्री नंबर था, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उसको दोबारा चालू करने के लिए। और जैसे बताया कि अर्बन हीट आइलैंड जो होता है, कोई कोई सिटी में कंक्रीट बढ़ने के कारण और ग्रीन कवरेज कम होने के कारण, जैसे बैंगलोर है कहीं कहीं है अर्बन हीट आइलैंड डेवलप हुआ है, और ज़रूर आप जो बताया और जो एक्सपीरियंस वहाँ से किया है धन्यवाद है। और दूसरा आप जो बताया कि जो एसी से जो गर्म निकलता है वो तो बिल्कुल एक कारण है कि जो पास वाला जो है ना, क्योंकि कहीं से निकलता है और कहीं भी गर्मी होता है, तो वो बिल्कुल सारा पॉइंट जो है, अभी तो वही प्रश्न पूछे थे कि भाई जो सस्टेनेबल कूलिंग जो है वो कौन सा सोल्यूशन है जो सस्टेनेबल कूलिंग करता है। तो सस्टेनेबल कूलिंग में तो ये बोलूंगा, जो पुराना जो हमारा घर बनता था जिसमें छत और जिसमें वॉल जो है बहुत थिक होता था और इवन मिट्टी का भी घर होता था जो नेचुरल कूलिंग था, वो तो जरूरी है। आजकल भी वही बड़े बड़े मीटिंग में यही डिस्कशन हो रहा है। धन्यवाद
जी। जनमणि जी, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और पूछना चाहूंगा। आजकल ये भी सुना जाता है कि कोस्टल एरियाज और हिली एरियाज में भी अब लू का इफेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो उन्होंने सवाल पूछा उससे मुझे याद आया।
बिल्कुल, जैसे हिमाचल प्रदेश है, अभी जितना हीट वेव मिला है हमको, अभी एक ही स्पेल गया, वो स्पेल में हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मिला है, क्योंकि जो हिल एरिया है वहाँ भी काफ़ी जो अर्बनाइजेशन हो चुका है, चाहे आप हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, और जो कोस्टल एरिया है आप तो सभी देखे हैं हम लोग, कोस्टल एरिया में तो सारे बिग सिटीज, बॉम्बे हो, मद्रास हो, सभी कोस्टल सिटी। अभी बॉम्बे में भी तो हीट वेव हुआ था, अभी मार्च में टेम्परेचर जो है 38 जो है 8 डिग्री 9 डिग्री अब नॉर्मल था बॉम्बे में। तो ये ट्रेंड है, वो तो नॉट ओनली इन इंडिया, न्यूयॉर्क से लेकर के कहीं भी आप जाइए, तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। तो इसीलिए तो अभी हम लोग ग्रीन एंड जो जीरो
जीरो बोलते हैं कि
जीरो कार्बन की बात करें 2070 में हमारा पीएम साहब। या
और जयपुर राजस्थान से प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपका सवाल क्या है?
जी नमस्कार। मैं खाली पेट या स्पाइसी भोजन जो लेते हैं या इम्यून सिस्टम जिसका डाउन है उनको भी लू का वो है क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि हमें इमरजेंसी दवा उस समय क्या रखनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोड पाउडर या और भी कोई दवा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो फ्लक्चुएट होता है, जैसे एसी से एकदम से बाहर निकलते जो फ्लक्चुएट होता है, जैसे कार से या घर से बाहर, वो उसमें कितना घातक है, प्लीज बताइए।
देखिए, पहली चीज है कि आपको अपने पास पानी और तरल पदार्थ रखें, वो जरूरी है, और उसका सेवन करते रहें, हर थोड़ी देर पे पानी या तरल पदार्थ लेते रहें, वो जरूरी है, जिससे कि आपको जो है पानी की कमी ना हो और लू ना लगे। ऐसे ही कई और फल आते हैं, आजकल फल का सीजन है, तरबूज है, खरबूजा है, लीची है, ये सब लेने से फिर पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा रहती है, तो आप इसका सेवन करें, लू लगने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। और आपने पूछा कि
ये और सवाल कार से बाहर अगर निकलते हैं या
ये जरूरी है कि हाँ, अगर आप ठंडे से गर्म में जाते हैं, गर्म से ठंडे में जाते हैं, तो उससे लू का प्रभाव पड़ने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से आपका इम्यून सिस्टम, जो आपने कहा, तो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है आपका जो है उसका, उसमें आपको इन्फेक्शन जैसे नजला, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू के हैं, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दिल्ली से एमपी सिंह फोन लाइन पर हैं। एमपी सिंह जी,
सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा बड़ा सिंपल सा दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि मान लो लू लग गई, अब इमीडिएटली हमें SOS क्या करना है? दूसरा क्या है कि अब हॉलीडे सीजन आ रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता है, जो हिल स्टेशन घूम आए हैं वो दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां पर अगर गर्मी है तो हमें उस चीज से वो क्या क्या प्रिकॉशन रखे हैं, ताकि भाई वो या मतलब लग जाए तो क्या हो
जी।
देखिए, लू से बचाव ही जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है, तो बचाव ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, बच्चों की छुट्टियां हैं, जरूरी है कि घूमने जाएं, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप घूमने के लिए शहर से बाहर ना जाएं, अपना सवेरे और शाम के समय बच्चों को पार्क ले जाएं, सवेरे और शाम जो है खेलने के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स कराएं। सिर्फ हम लोग जो है हिल स्टेशन का रुख कर लेते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हिल स्टेशन पे भी लू और जो गर्मी की लहर है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, तो उसमें जाकर के, और आजकल आपने देखा ये सभी लोग हिल स्टेशन जाते हैं तो कितनी लंबी कतार रहती है, उससे जैसे जीरो कार्बन की जगह तो और ज़्यादा कार्बन एक्सपेंडिचर होता है और समय का नाश होता है। तो बेहतर है कि आप अपना ऐसी जगह जाएं जहां आपको ठंडा रहे, तो आप घर के अंदर रहें, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें, और बच्चों को सवेरे और शाम खेलने के लिए ले जाएं, वो ज्यादा जरूरी है कि आप लू के खतरे से बच्चों को या अपने को अवगत कराएं।
डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और उन्होंने पूछी थी, प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है?
हाँ, प्राथमिक उपचार, देखिए हम लोग सब कहते हैं कि लू लग जाए, लू लग जाए, तो अब लू लग जाए का कितना असर है वो जरूरी है। अगर बच्चे को या बड़े को सिर्फ चक्कर आ रहा है, घबराहट आ रही है, तो आप पानी का सेवन कराएं और उसे आराम कराएं और ठंडी जगह रखें, ये जरूरी है। अगर बच्चा गफलत में जा रहा है या बड़ा जो है गफलत में जा रहा है, होश नहीं है या ध्यान नहीं कर पा रहा है या मुंह से नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ठंडे पानी की पट्टियां रखें और जो है उस बच्चे या वयस्क को अस्पताल ले जाए।
डॉक्टर जनामणि, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो हीट वेव होती है सिर्फ दोपहर के समय होती है या शाम को हो सकती है, रात को भी हो सकती है या अल सुबह भी हो सकती है?
बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हीट वेव का जो मैक्सिमम देखा गया, जो हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कब हीट वेव लगता है, तो हीट वेव का चार पैरामीटर होता है। जैसे आज अगर हीट वेव शुरू हुआ, एक तो ये है कि कौन सा दिन में पहुंचा है। कभी कभी दिल्ली में कंटिन्यूअसली पिछले साल 15 दिन 20 दिन हुआ, तो वो एक तो स्पेल होता है। दूसरा, वो पर्टिकुलर डे का तापमान कितना गया दिन का, वो एक हो गया सेकंड। और थर्ड पैरामीटर जो है, रात का तापमान कैसा रहा। अगर रात का तापमान ज़्यादा रहता है तो देन हीट वेव, और जो बोलते हैं कि बहुत फैटालिटी होता है। तो इसीलिए बहुत सारा पैरामीटर, और ह्यूमिडिटी, जो नमी, अगर नमी ज़्यादा है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये देखा गया कि जो पश्चिम भारत है, मई और जून में हीट वेव काफ़ी खतरनाक होता है, और अगर पूर्व भारत का जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये जो जगह है, ये इलाका में अप्रैल मई का हीट वेव होता है, क्योंकि जून में मानसून आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें होता है सनस्ट्रोक। या
मथुरा से चौधरी महेंद्र सिंह फोन कर रहे हैं हमें। जी, आपका सवाल पूछिए महेंद्र जी, आपका सवाल पूछिए।
जी, आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग 12 महीने जलती हुई भट्टियों पर काम करते हैं, वो अपने आप का अपने आप बचाव कैसे कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल, मैं इसको इसी तरफ लूंगा कि पुराना जमाना में हो सकता है कोई, मतलब उस टाइम का तापमान इतना नहीं था और इतना लंबा हीट वेव नहीं चलता था, लेकिन आजकल कोई अगर काम कर रहा है, मेरे पास तो ऐसे कोई ना मीडिया में रिपोर्ट आई, ऐसे मतलब सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल का लोग बहुत केयरफुल है और दोपहर में बिल्कुल निकलते नहीं है, अनटिल अनलेस कोई जैसे अर्जेंट काम है तो निकलते हैं, तो अपने सेफ्टी के साथ निकलते हैं। लेकिन जो भाटी, आप जो बताया कि जो काम करते हैं भाटी में, चाहे ईट के भाटी हो, कहीं भी हो, बट वहाँ भी काफ़ी जागरूकता बचाव वो करते हैं। इवन कंट्रैक्टर हो या जो भी लगाया, वो भी उनको रेस्ट देता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, कोई घर का चल रहा है, कोई बड़े बड़े सिटी में, तो सरकार सारा जगह में काफी जागरूकता है। मुझे नहीं लगता है कोई लंबा टाइम काम करता है, क्योंकि आजकल का तापमान बहुत ज्यादा रहता है।
ठाणे महाराष्ट्र से गुरुनाथ हमें फोन कर रहे हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए आपका।
जी सर, नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये मतलब टेम्परेचर ज्यादा ही है, लेकिन मतलब 40-45-50 तक पहुंचता है, तो सर ये जो बुजुर्ग आदमी को, मतलब जिनको कुछ मतलब पहले से बीमारी है, और इसमें देखा गया है कि मतलब कुछ यंग लोगों का भी डेथ हो चुका है लू लगने से, तो सर इसमें मतलब क्या पानी की मात्रा एकदम से शरीर से कम होने के बाद ही मौत, मतलब ये डेथ होती है? और ये जो मतलब ये जो यूरिन के, सर जो यूरिन के बारे में पूछ रहा हूँ, यूरिन जो करते समय जो मतलब उसकी जलन, इसके मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से मतलब क्या है, यूरिन के लिए मतलब क्या है, ये तकलीफ क्यों होता है?
डॉक्टर अनुपम,
देखिए, बुजुर्ग लोगों में पानी की मात्रा कम होने की एक अलग बात है, अगर पानी ज्यादा देने में भी उन्हें देखना पड़ता है, दिल की दिक्कत हो तो आपको वो भी देखना पड़ता है। और बुजुर्ग लोगों में सबसे बड़ी बात ये, जो उनका मस्तिष्क में जो तापमान का संतुलन होता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, वो उम्र के साथ साथ कई बार क्षीण हो जाता है, जिसकी वजह से वो गर्मी के प्रभाव में उस हिसाब से पूरे शरीर से गर्मी का असर ज़्यादा जल्दी असर कर जाता है। तो इसलिए बुजुर्ग लोगों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पेशाब की मात्रा, अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो पेशाब की मात्रा जो है कम होती है, और उसमें फिर आपको जलन हो सकती है, तो उसके लिए आपको पेशाब की जांच एक बार करानी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें इसलिए।
डॉक्टर जनरमणि, के चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह का उन्हें व्यवहार रखना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल यही, अपने को सेफ्टी रखने के लिए आप अपना ही ख्याल रखें, और ऑलवेज जो है आप ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन, जहां भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, या वेबसाइट जाए और पहले अपना तापमान देखे इलाका, या जहाँ जा रहे हैं आप टूर कर रहे हैं, उसका तापमान ले और अवॉइड करें जो दोपहर में ट्रैवल करना, यही है।
डॉक्टर अनुपम, आप क्या कहेंगे?
मैं कहूँगा अपना ध्यान रखें, घर में सभी का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं और बाहर विचरण ना करें धूप में।
जी। और श्रोताओं, कार्यक्रम का निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और चर्चा में भाग लेने और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर आर के जनामणि और डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप दोनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप इस बारे में हमें अपने सुझाव ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप newsonair.gov.in पर जा सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सोमवार को रात 9:30 हम एक नए मुद्दे के साथ चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए निखिल कुमार को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।